बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, खूब संपत्ति है पास में, परंतु कर्म योग के कारण से कर्म फल के अनुसार उसको कोढ़ की बीमारी हो गई, रक्त पिष्ट की कोढ़ की बीमारी, पूरे शरीर में मवाद टपकने लगा। बहुत इलाज कराया, देसी इलाज कराया, अंग्रेजी इलाज कराया, बड़े बड़े शहरों में जहां कहीं भी उसकी पहुंच थी सब जगह जाके इलाज कराया, परंतु बीमारी ठीक नहीं हुई। सब तरह से निराश हो गया वो। हताश होने के बाद में एक दिन वापस वो लौट आया कि ऐसे जीवन में जिसमें कि घर वाले भी जिससे भिन्न भाव रखते हों छूते नहीं है, कि कुष्ठ की छूत की बीमारी छुएंगे तो हमारे की बीमारी लग जाएगी, सब कोई पानी भी पिलाए तो ऊपर से, रोटी भी दे तो ऊपर से, कपड़े को भी हाथ से छुए नहीं, ऐसा जीना किस काम है जिस घर में मैं अपना मालिक हूं लेकिन मेरी ये दशा आज कोई पूछ नहीं, इससे तो मर जाना अच्छा है। क्या मर जाओ तो आप मर जा झुक पर लो, मर जा बढ़िया, ऐसा विचार किया और कह दिया भाई अब मैं गंगा जी में आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहा हूं, अमुक समय में यहां से जाऊंगा। सूचना मिली, जो उनके स्नेही लोग थे 150 आदमी उनके साथ में हो गए और वहां से वे हरिनाम कीर्तन करते करते गंगा जी की तरफ चले गए। भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, गोविंद हरे गोपाल रे,
गोविंद हरे गोपाल हरे,
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे,
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे,
शुभ काम करने के लिए कहीं जाने का काम पड़े तो वहां आपसी बातें वे करते हुए नहीं जाना चाहिए। चाहे मंदिर दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे सत्संग के लिए जाओ, चाहे इस प्रकार जागरण उत्सव के लिए जाओ जिसमें आत्म कल्याण के विषय का संबंध हो, ऐसी जगह जाते समय में भगवान का नाम लेते हुए जाना चाहिए, घर की बातें आपसी बातें करते हुए नहीं जाना चाहिए। यदि आपसे बातें वे करते हुए जाएंगे तो जो कोई भी बीच में कीड़े मकोड़े मरेंगे उसका पाप हमारे गले बन जाएगा, और हरि नाम का स्मरण करते हुए जाएंगे, भगवान नाम का स्मरण करते चलेंगे तो उन प्राणियों का जो बेचारे भूल से हम नहीं चाहते लेकिन वे हमारे कारण से चले जा रहे हैं, प्राण छोड़ रहे हैं, तो उनको आनंद की कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी बेचारे, क्योंकि अंतिम समय में भगवान नाम स्मरण करना चाहिए, इसको महादान कहा गया है। महादान ये है अंतिम समय में परम सेवा जिसे कहते, ये है आखिरी समय में किसी को भगवान का नाम सुनाना, भगवान का नाम याद दिलाना। तो उनके कान में भगवान नाम पड़ जाएगा, भूल हमारी है परंतु हमारे को तो कुछ दंड मिलेगा ही, परंतु सावधानी से चलना चाहिए। फिर भी अगर सावधानी रखते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है तो उनका तो भला होगा, बेचारा होगा, उनकी तो सदगति होगी। तो ऐसे और बातें बातें करने जाएंगे तो उनको भी जीव अत्यात होगी, वो तो मरेंगे ही, वो भी दुर्गति में और हम भी दुर्गति में, दोनों को नुकसान होगा। तो ऐसे शुभ काम करते समय, जाते समय, तीर्थ यात्रा करते समय जाओ तो पैदल हो जाए, कैसे भी जाओ तो भगवान नाम का स्मरण करो, या फिर मौन रख करके जाओ, बोलो मत, मौन रख करके। जन हरिया संसार में बहु बोल्या बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जीव चाहे सुख। अगर सुख चाहिए तो मौन रख करके चलो, मौन बोलो मत, ज्यादा बोलने से विकार बढ़ेगा, संताप पैदा होगा, कलह पैदा होगा। तो ये याद रखने लायक बात है, वे लोग अब गंगा तट की यात्रा करने जा रहे हैं तो भगवान नाम का कीर्तन करते करते जा रहे हैं, वहां गंगा तट पर पहुंच गए। अब वहां गंगा तट पर पहुंचे हैं तो उस समय कमाल जी जो गंगा कबीर जी के पुत्र वहां गंगा तट पर गए हुए थे, बहुत से लोगों को आया हुआ देखा तो कमाल जी ने पूछा, अरे भाइयों आप लोग गंगा तट पर मिलकर के कैसे आए, यहां कोई विशेष सत्संग का कार्यक्रम है या कोई विशेष या मीटिंग है या विशेष कोई कार्यक्रम है, किस लिए आए हो? तब कह दिया कि उस सेठ ने कहा, महाराज मीटिंग क्या है, मेरा जीवन का अंत करने आया हूं मैं, आज गंगा जी में आत्मसमर्पण करके कोढ़ की बीमारी से छुटकारा चाहता हूं, गंगा में प्राण त्याग दूंगा तो भला ही होगा, वैसे लिखा है। गंगा तिरबो सीखी है विप्रन से व्यवहार, पार गए तो ही पार है और डूब गए तो ही पार है। तैरना सीखना तो गंगा जी में सीखो, यदि तैरते तैरते सीख जाओगे तो ही बढ़िया बात है, और सीखते सीखते डूब गए तो भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अंतिम टाइम में हड्डे भी डालते हैं गंगा जी में भले के लिए, तो जीते जीते शरीर सौंप दिया, कोई नुकसान क्या होगा। और देन लेन भी करना है तो ब्राह्मणों से करो, यदि वापस मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं मिल जाए तो दान ही दियो, आग कोई खतरे की बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं है। तो ये बात हो, गंगा जी में प्राण त्यागने के लिए आया हूं महाराज, मैं ऐसी कोढ़ की बीमारी से ऐसा दुखी हो चुका हूं कि कुछ कह नहीं सकता। कमाल जी ने कहा, मनुष्य जीवन क्या है, बार बार मिलने वाला है ये, जिसको तुम अपने आत्महत्या करके इसको नष्ट करना चाहते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, मनुष्य जन्म को तो जितना हो सके सफल करो, इसका सदुपयोग करो, इसका जो दुरुपयोग करेंगे प्राण का यदि हम त्याग करेंगे तो अपने कुछ न कुछ आत्महत्या का दोष लगेगा ही। मनुष्य जीवन में आने के बाद में हमें जो कुछ कमाई करनी चाहिए केवल हमें उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए, दूसरी बातों की तरफ ख्याल नहीं करना चाहिए। ये बात उनको समझाई, ओके महाराज मैं तो इस बीमारी से दुखी हो गया, केवल बीमारी से, अरे बीमारी ये तो हमारी कर्मों के अनुसार आने वाली है, जिस किसी को बीमारी लिखी है, हानि लाभ जीवन मरण जस अभिजस विधि हाथ, ये तो हानि लाभ ये बीमारी वगैरह इसी में आने वाली चीजें हैं, ये तो जिसके जैसी लिखी है वैसी आएगी, क्या पता यार मरने के बाद में कोई वहां पर फूलों का झूला थोड़े मिले अपन, क्या दशा होगी आगे कौन जाने, आगे जान करके और इससे भी ज्यादा तकलीफ मिली तो। बस यहां रहते हुए जब तक शरीर अपना आप नहीं जाता है तब तक शरीर को नहीं छोड़ना चाहिए, और इसका जितना बन सके सदुपयोग करना चाहिए, महाराज मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, तू बीमारी से ये शरीर छोड़ना चाहता डर करके, तो मैं यदि तेरी बीमारी मिटा दूं तब तो नहीं मरने की इच्छा होगी ना, कहा हमारा तब तो मुझे और चाहिए क्या, बीमारी ठीक हो जाए तो निहाल हो जाऊं। चल गंगा जी में उसको साथ में लेकर के गए, गंगा जी में खड़ा किया, और गंगा जी में खड़ा करके उनसे कहा, तू मुंह से राम बोल करके पानी में डुबकी लगा ले। गंगा जी में डुबकी लगा, उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, राम बोला तो सही परंतु उस समय, अरे मैं ठीक होने के बाद मैं संसार में जाऊंगा, घर में जाऊंगा, ऐसी मौज करूंगा, लोग देखेंगे आएंगे ये करेंगे वो बात, दुनिया की यादें आने लग गई, डुबकी लगाई बाहर निकला, बीमारी ज्यों के त्यों मौजूद, दोबारा फिर का ठहर, अब की ध्यान रख ऐसे डुबकी लगाते टाइम केवल हरिनाम का स्मरण कर दुनियादारी की बातों को याद मत करो, फिर बातें याद आ गई, फिर डुबकी लगाई तो भी ठीक नहीं हुई कोढ़ की बीमारी। तीसरी बार में कहा, अब की लगा ठीक होती है तेरी बीमारी, एक हाथ में डंडा था कमाल जी के, डंडा उठाया डुबकी लगाने के लिए, जो ही कहा माथे में जोर से एक बछीड़ मार दिया, ओए राम, और ऐसे जो ही डंडे की चोट लगी राम का नाम लिया, गंगा में डुबकी लगाई, बीमारी गायब हो गई। राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोई, बात ये है भैया, राम राम सबको ही कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो ही, राम राम कहते तो हैं लेकिन दसों इंद्रियों को एकाग्र करके कोई राम नाम नहीं कहता, दसों इंद्रियों को एकाग्र करके एक साथ में जोड़ करके एक वृत्ति होकर के कोई अगर नाम ले तो अनंत फल की प्राप्ति है। हमारी इंद्रिय आंख किधर भागी जा रही है, कान किधर भागे जा रहे हैं, नाक किधर भागा जा रहा है, जीभ किधर ही भागी जा रही है, सभी इंद्रिय चमड़ी किधर ही भाग, कोई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दशा हो रही है, और इनको एकाग्र करके परमात्मा का नाम कोई लेता है तो उसको तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही डंडे की चोट लगते ही सारी इंद्रिय एकाग्र हो गए, दूसरी बातें सब भूल गए, और भूलते ही जो राम जी का नाम लिया कि बीमारी ठीक हो गई। अब चोट लगी थी उसको तो घाव को तो पत्ते मसल करके वो लगा दिया, ठीक हो गए, और कोढ़ की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। बाहर आकर के उसने कमाल जी को प्रणाम किया, कहा महाराज न्याल कर दिया आपने, मरते हुए को दया जीवन दान दे दिया, आपको बार बार प्रणाम है, धन्यवाद है मेरे ओ भाग्य जो आप सत्पुरुषों के दर्शन मिले। कहा देख एक बात है, ये बीमारी ठीक तो हुई तो है, लेकिन याद रखना अब हमेशा राम नाम का जप करते रहना, याद रखो राम नाम का जप करते रहना, और जो तेरे पास में घर में संपत्ति है उसका आधा हिस्सा परमार्थ में लगा दो, दीन दुखियों की सेवा में लगा दो, गरीबों की सहायता में लगा दो। महाराज जो आज्ञा महाराज, अब नहीं तो मेरे लिए तो मरने के बाद में मेरी संपत्ति नहीं थी, कुछ काम की थी नहीं, वो आज आपकी कृपा से मुझे मिल गई है, तो क्यों नहीं लगाऊंगा वापस, अवश्य करूंगा जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार उसे ठीक करके निरोग करके भगवत भक्ति में लगा करके उसे रवाना किया, वो अपने घर कमाल जी लौट करके वापस अपने आश्रम पर कुटिया पर चले आए जहां कबीर जी महाराज विराजमान। आज आने में देरी हो गई, कबीर जी ने पूछा बेटा आज लेट कैसे आए हो, देरी क्यों लगाई, क्या हुआ? वहां बातें करने में टाइम लग गई थी, पहले एक एक मिनट की खबर ली जाती थी, और आजकल तो पता ही नहीं चलता क्या होता है, तीन चार घंटे सिनेमा में बैठ करके देख करके आ जावे तो पता ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया, कहीं होटलों में बैठ करके गप सप मार करके आ गए तो क्या हुआ पता ही नहीं। एक आधा घंटा भी लेट होते पूछते थे डायरी रखी देरी से क्यों आए, कारण क्या पता बता। ऐसे अभिभावक सच्चे माता पिता जिन बालकों का ख्याल रखते थे तो बालक भी डरते और सुधरते थे, कहीं पूछेंगे क्या जवाब देंगे। इस हिसाब से आज देरी से आए, आने पर पूछा कारण कबीर जी ने, तो उन्होंने जवाब दिया महाराज बात ऐसी है, आज एक कोड़ी आ गया था, कोड़ की बीमारी से दुखी था, मर रहा था, और प्राण त्यागने के लिए चला यार, मैंने तीन बार राम नाम कहला करके उसकी कोड़ की बीमारी ठीक कर दी। महाराज मन में कमाल जी आज प्रसन्न है कि मैं जब ये बात बताऊंगा तो गुरु जी कितने प्रसन्न होंगे, ओ आज एक कोड़ी का तेने कल्याण कर दिया, बड़े राजी होंगे। उसके मन में ऐसी भावना थी, परंतु जो ही कमाल जी से ये बात सुनी कि तीन राम नाम से एक कोड़ी का कल्याण किया, तो कबीर जी नाराज हो गए, नालायक कहां तू मेरे वंश में पैदा हो गया, तेने मेरे वंश को डुबा दिया, वंश तो वो दिया तेने एक कोड़ी को ठीक करने के तीन नाम खर्च कर दिए, तीन नाम खर्च कर दिए, बता इतनी कीमत घटा दी राम नाम की तेने। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, तीन राम के नाम से कोड़ी किया निहाल, मेरा वंश डुबो दिया तेने, नाम डुबो दिया नारायक, इतने चिड़े कबीर जी, कोड़ी को ठीक करने में तीन नाम खर्च कर दिए, बता जा तू नाम की महिमा नहीं जानता, इसलिए तुलसीदास जी के पास जाओ, नाम की महिमा वे बताएंगे तेरे को, राम नाम की महिमा। ये दोहा लिख के दिया, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, तीन राम के नाम से कोड़ी किया नहाल, ये दोहा लिख करके ले जाओ तुलसीदास जी को देना, जो हुक्म सा आज्ञा मिली। गए तुलसीदास जी के पास में, तुलसीदास जी ने दोहा पढ़ा कबीर जी का लिखा हुआ, अच्छा अच्छी बात है चलो। उन्होंने कहा कमाल से जाओ भाई, ऐसा करो तुम काशीपुरी में जाकर के सब जगह घोषणा कर दो, सूचना दे दो, जितने भी यहाँ पर कोड़ी इकट्ठे हुए हैं सभी कोड़ी सुबह सूर्योदय के समय तुलसीदास की कुटिया पर पहुंच जा, जितने कोड़ी इकट्ठे हैं, और कोड़ी मरने के लिए काशी में बहुत 500 कोड़ी इकट्ठे हो गए थे कि मरेंगे तो काशी में मरेंगे तो कल्याण हो जाएगा, शंकर भगवान अपने आप भगवान का नाम सुनाएंगे, इसलिए मरते टाइम काशी में जाते ही है लोग, वृद्ध अवस्था के टाइम मरे तो काशी में मरना ठीक है, काशी मरना मुक्ति, ऐसे वहां ये बात बताई। 500 कोडी सुबह सूर्योदय होते ही तुलसीदास जी के आश्रम पर पहुंच गए। कितनी 500 कोड़ियों की भीड़ लग गई। उस समय तुलसीदास जी महाराज कुटिया से बाहर आए, तुलसी पत्र पर एक राम का नाम लिखा, चंदन से एक नाम लिखा तुलसी पत्र पर, तुलसी के पत्ते पर, और उस तुलसी के पत्ते को घड़े के पानी में मसल करके घोल दिया। वो तुल राम नाम का चरणामृत बना दिया और उस घड़े का पानी लेकर के कमंडल में जितने कोड़ी थे सब के ऊपर डाल दिया। सब कोड़ियों के ऊपर वो तुलसी पत्र घोड़ा हुआ जल, गंगा जल सब के ऊपर डाल दिया और जिन जिन के पर जल लगा उनका सबका शरीर कंचन बन गया, निरोग हो गया, सब ठीक हो गए। 500 कोड़ी एकदम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए एक राम नाम के प्रताप से। कमाल जी खुशी मनाने लगे, ओहो वास्तव में कबीर जी महाराज ने ठीक ही कहा था, मैंने एक कोड़ी को ठीक करने के लिए 3 नाम खर्च किए और इन्होंने एक नाम से 500 कोड़ियों का कल्याण कर दिया। तो वास्तव में महिमा इसकी बहुत विलक्षण है। वे विनम्र बन करके और वहां से वापस लौट करके आए, तुलसीदास जी महाराज वाली घटना उनको बताई। कबीर जी से कहा ये बात हुई है, कबीर जी ने कहा भाई अभी तक नाम की महिमा बुरी तुझे उन्होंने भी नहीं बताई। तुम इतनी बार समझना कि केवल 500 कोड़ियों का उद्धार होता, इससे भी आगे इसका पावर है। ऐसे करो, तुम तुलसी जी ने 500 कोड़ी किए हाल, कितनी कम कीमत हुई एक नाम की लाल। लिखा तुलसी जी ने 500 कोड़ी किए निहाल, कितनी कम कीमत हुई एक नाम की। एक नाम की कितनी कीमत कम कर दी, 500 कोड़ी के उधार होता है क्या, इतनी शक्ति इस नाम में। ये दुआ लिख करके उन्होंने सूरदास जी के पास भेजा, जाओ वृंदावन जाओ सूरदास जी के पास, यमुना तट पर सूरदास जी के पास भेजा। कमाल जी यमुना जी के किनारे विराजमान सूरदास जी के पास पहुंचे, दूर से चले जा रहे थे, जो ही उनके पैरों की आवाज आई सूरदास जी बोले, ओ कमाल कमाल कमाल। अंधा आदमी भी बोल रहा है सूरदास जी, कमाल जी को नाम से पहचान रहा देख जैसे, महाराज मैं ही हूं सेवक क्या आज्ञा है। अरे जरा पीछे मुड़ करके यमुना में देखो, वो देखो एक मुर्दा बाहर जा रहा है, मुर्दा मुर्दा लोग बाग बहा देते थे उधर गंगा यमुना किनारे पे होते, आज भी बहा देते हैं बहुत से, थोड़ा सा अग्नि का संस्कार मुंह दिया और मुखाग्नि दे करके रवाना किए बहा देते हैं। तो उस मुर्दा को बहा दिया था, वो यमुना जी में बाहर जा रहा था, जो ही सूरदास जी ने कहा कि मुर्दा बाहर जा रहा है उसको बाहर निकाल के ले गया। अब अद्भुत बात, पहले तो मुझे कैसे पहचान और मुर्दा जा रहा है उनको पता क्या है सूरदास, लेकिन जब आदेश दिया है वहां पर कबीर जी महाराज ने भेजा है तो जाना ही पड़ेगा। गए वहां, मुर्दे को घिसीट करके बाहर लेकर के आए, महाराज जी मैं बाहर लेकर के आ गया हूं। उसी समय सूरदास जी उठ करके उसके पास में पहुंचे और उस मुर्दे के कान में मुंह लगा करके रा आधा अक्षर बोला, हो पूरा रा, पूरा राम मैं नहीं बोला रा, इतना सा बोल दे, मुर्दा जागृत होकर बैठ गया, मुर्दे में प्राण संचार हो गया, जीवित हो गया। पूरा अक्षर बोलने की राम नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कमाल जी ने प्रणाम किया चरणों में, धन्य हो महाराज, वास्तव में जिस नाम की महिमा मैं गर्व से कहता 3 नाम से मैंने कोड़ी का कल्याण किया, इसकी तो महिमा अपरंपार है। मुर्दा भी आधे नाम से जीवित हो जाता है, क्या कहा जाए, अर्ध नाम उद्धार करेगो नहीं तो फिर जन्म धरेगो। उसी नाम का आधे नाम का आधार संत महापुरुष हमें बताते हैं, अर्ध नाम उद्धार करेगो नहीं तो फिर जन्म धरेगो। वेद पुराण सकल को नायक इन्हीं तरह सब काल रहेगो, है निज नाम सकल भव भंजन जय सहजा ध्यान धरेगो, गय विश्वास भजन मन लावे सुर संत जन तुरत रहेगो, अंतर सोच करे उज्वाला कबो ना फिर जन्म धरेगो। जयमलदास इसी विद भजिया भव सागर में ना ही परेगो, अर्ध नाम उद्धार करेगो। कोई अर्ध नाम आधा नाम जीव का कल्याण करता है, एक अनंत प्राणियों का कल्याण करने की क्षमता रखने वाला है। सज्जनों उसी नाम के प्रभाव के विषय में जब ये बात मालूम पड़ी, वापस आए कबीर जी चरणों में प्रणाम करके कमाल जी ने कहा, महाराज अब मेरी समझ में आ गया, इस नाम की महिमा अनंत है, अपार है, और जो किसी भी रीति से तुलना में की जा नहीं सकती, ऐसे नाम महाराज को बार बार वंदने बोलो राम जी महाराज की। तो यही बात बता रहे हैं कि विघ्न हरण मंगल करण तारण जनक सुतापति नाम जय जय मंगलता सुपद कारण मो सरसाम। जो कोई भी उस नाम महाराज का आश्रय ले लेता है उसका जीवन परम मंगलमय हो ही जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। कली काल निशि घोर में हरिहर कियो प्रकाश, जैसे रात का अंधेरा होता है, घोर अंधेरा छाया हुआ है, अमावस्या की रात है, कहीं प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं, परंतु उस रात्रि के घोर अंधकार के समय में जिस समय सूर्य उदय होता है वो अंधेरा कहाँ का कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ का कहाँ गायब हो जाता है, वो पता ही नहीं देता, वो घोर अंधेरी रात में कोई प्रकाश नहीं, दूसरे का और सहायता नहीं। तो इसी प्रकार कली काल निश घोर में कलियुग रूपी जो घोर रात्रि का समय है, ऐसे घोर रात्रि के समय में जो श्री हरिराम दास शिवराज जैसे सत्पुरुष वे यहाँ पर आए, सूर्य के समान प्रकट होकर के आए और उन्होंने अंधेरे को मिटाया, और सतयुग त्रेतायुग द्वापुर का जो युग का समय है वो उन्होंने कलयुग में स्थापित कर दिया, मतलब कलयुग में कलयुग बना दूर कर दिया, और वहां पर सतयुग जैसा व्यवहार, त्रेतायुग जैसा व्यवहार, द्वापुर जैसा व्यवहार कलयुग में उन्होंने स्थापित कर दिया। तो ऐसे उनमें दुर्गुण दुराचार जो कलयुग के हुआ करते हैं वे सारे होने पर भी उन सत्पुरुषों की कृपा से सब नगण्य हो गए, वे साफ हो गए और प्राणियों को आनंद की अनुभूत होने लगी। राम संत तारण नमो, दैत द्वापुर दैत मिटाए, गुरु पूजन सेवन सदा त्रय संगत सुखदाय। प्रत्येक प्राणी के लिए एक गुरु महाराज की पूजा सेवा और उनकी सत्संगत, ये तीनों चीजें परम सुख देने वाली हुआ करती है प्रत्येक प्राणी के लिए। और गुरु महाराज के शरण में जाने के बाद में जो द्वापर युग का जो भाव है, वो द्वापर युग का भाव जो इस सतयुग के अंदर सतयुग त्रेतायुग में जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो कलयुग के समय में गुरु महाराज कृपा करके हमें प्रदान कर देते हैं। यहां गुरु महाराज के शरण में रहने पर ज्ञान का विनोद प्रदान करते हैं, भक्ति का जो चारों तरफ रहस्य बता करके हमें भक्ति का रसपान कराते हैं, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष वे उनके सम्मुख रहने पर हमें समर्पित कर देते हैं। ऐसे परमानंद आनंद प्रकट उनके शरण में रहने पर सम्मुख होने पर ये सारी बात होती है। हरि कन्या पुनि जन्म धुरु मन, हरि जैसे समुद्र, समुद्र की कन्या है लक्ष्मी, लक्ष्मी के अवतार बनकर के आई है सीता, सीता जी का आदि अक्षर है सी, और उसके बाद में त दे करके कविता का क्षेत्र जो पिंगल भाषा उसका अंतिम अक्षर देव अर्थात ल, तो शीतल जो गांव है वहां पर श्री हरिराम दास शिवराज विराजमान हुए, जो रामदयाल जी महाराज के दादा गुरु जी सिंथल में विराजमान, उस सिंथल धाम की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ऐसा जो परम पूजनीय स्थान वहां वो जो सिंथल का धाम है, वहां पर जो महापुरुष विराजमान रहने वाले हैं, वे एक प्रकार से आप समझिए गंगा का प्रवाह जैसे पर्वत से प्रकट होता है, तो ये ज्ञान गंगा का अपने रामस्नेही संप्रदाय की ज्ञान गंगा का प्राकट्य सिंथल के द्वारा ये संप्रदाय के रूप में बढ़ा है, तो वहां पर्वत से प्रकट होता है। तो यहाँ पर उस पर्वत में तो सिंथल धाम रूपी एक पर्वत क्षेत्र है, वहां पर हाथी के रूप में विराजमान है, मन रूपी हाथी को मारने वाले, मन है नहीं, वो मन एक हाथी के समान है, उस हाथी को मारने के लिए महापुरुष सिंह के समान है, इसलिए नाम उसका सिंह थल, सिंह थल बता दे सिंह का स्थान, लेकिन सिंह का स्थान है तो वो सिंह कैसा है, जो मन रूपी हाथी को दमन करता है, मतलब उनके सामने वहां गुरु महाराज के शरण में जाने पर मन रूपी हाथी वो वश में हो जाता है। तो नवनिधि और नवदा भक्ति देने वाला हिमालय जो है वो संतों का नित्य स्थान हुआ करता है। तो ऐसे उस श्रृंखल में श्री हरिराम दास जी महाराज नवदा भक्ति का जो साम्राज्य प्रदान करने वाले हुए हैं और उनसे जो खेड़ापा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उस गुरुधाम को भी बड़े आदर के साथ में वंदन करते हैं, परम आदरणीय है। क्योंकि जो ज्ञान याद हम तो समझते होते हैं कि हमारे पास में ही होगा, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो क्या नहीं मिला हुआ आखिर में वहीं से है। भले उसका विस्तार यहाँ किया हो लेकिन विस्तार यहाँ करने पर भी प्राप्ति का जो क्षेत्र है वही स्थान है, इसलिए तो प्राप्ति का क्षेत्र परम पूजनीय आदरणीय होता है। देखो आजकल दुनिया में जहां सोने की बड़ी भारी कीमत है, बाजार में जाते हैं सोना कितना महंगा मिलता है, अब यहां हमारे पास में शुद्ध जो सोना मिलता है वो सोना आखिरकार जमीन में से मिट्टी में से निकलता है, मिट्टी में सोना निकलता है। सोने की खाने हैं छत्तीसगढ़ में, सोने की खदान है। अब वहां की मिट्टी भी कितनी कीमती है कि उस एरिया में किसी को जाना नहीं देते, वहां सुरक्षा रहती है, पहरेदार रहते हैं, वहां उनको जाने दिया नहीं जाता। तो कैसे बोलो वहां मिट्टी भी कीमती होती है क्योंकि उत्पत्ति खान है। तो बताओ यहां सोने के तो हम अलग अलग पहरा देने वाले तिजोरी में रखने वाले होते हैं लेकिन वहां पर उस जमीन के भी जो पहरा होता है तो उसकी कीमत के कारण से होता है। तो वहां ऐसे महापुरुष जिस जगह विराजमान हैं तो उत्पत्ति जो जिसकी है इस संप्रदाय की वो उत्पत्ति क्षेत्र परम आदरणीय है, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम बिन बिन कही जनही के प्रसाद, प्रेम लचन उमा जन्म परासिंभव उद्दमाद, परासिंभव उद्दमाद। प्रेम लक्षणा रूपी दसवां भक्ति, नवदा भक्ति तो जैसे बताई वो पहले वर्णन आती है पर नवदा भक्ति से भी अगली जो स्टेज है वो प्रेमा भक्ति है। और प्रेमा भक्ति आने के बाद में नवदा भक्ति अपना पीछे छूट जाती है, अब उसके बाद में दूसरी भक्ति की आवश्यकता नहीं रहती जो प्रेमा भक्ति में सराबोर हो जाता है। तो प्रेमा भक्ति ही हिमालय में जैसे हिमालय की पुत्री उमा पार्वती हुई है ना, पार्वती हिमालय की पुत्री है, तो प्रेमा भक्ति है वो उस हिमालय की पुत्री है सिंथल की जो गुरु महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। अब दामाद रूप शंकर भगवान उनके दामाद बने और शंकर भगवान ने उस उमा को प्राप्त करके जगत में अनेक प्रकार के ज्ञान का प्रचार किया। तो वो प्रेमा भक्ति गुरु महाराज से प्राप्त करके यहां पर प्राणियों के हृदय में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं ये सत्पुरुष हमारे गुरु महाराज। ऐसे उस प्रेमा भक्ति को जो स्थान देने वाले प्रकट करने वाले महापुरुषों के उस धाम में हम बारंबार वंदन करते हैं जहां पर कि अनेक महापुरुष विराजमान हुए और जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के जो रास्ते बताए जीवों के, जैसा जैसा प्राणी होता है उस प्राणी के भाव के अनुसार ही उसके कल्याण का मार्ग निर्देश करते रहते हैं। काश्यप के सूर्य काश्यप के सूर्य जैसे अज के शंकर प्रकाश, ताही के कादत्त शाम ऐसी विध जानिए, नाभ के ऋषभ बनाथ करदम के कपिल मुनि, अंतरी के अवधूत एक सोई विध मानिए, और बाल खिल्य कृतु के जात के जधु प्रकाश, दशरथ के रामचंद्र कौशल्य बखानिए, हरि जन के रामदास काटक के मेरे करम पास, ताहि के चरणारविंद श्रृंग ब्रह्म भानिए। कश्यप जी के जैसे पुत्र हुए सूर्य सूरज नारायण और ब्रह्मा जी के जैसे पुत्र हुए हैं शंकर जी, और उस शंकर भगवान के दिव्य पुत्र वे हैं कार्तिकेय स्वामी, वे उनकी महिमा का विस्तार करने वाले और उनके तेज का जगत में प्रचार करने वाले हुए हैं। नाभि के जिस प्रकार ऋषभ जी पुत्र हुए, जो ऋषभ जी गुणों में महान श्रेष्ठ रहे भागवत का प्रसंग आप सुनेंगे ही आगे चलो, कर्दम ऋषि के कपिल जी हुए, जो कर्दम ऋषि ने तपस्या की तो कपिल जी प्राप्त हुए, स्वयं भगवान ही पुत्र रूप में उनके यहाँ पर प्रकट होकर के आए, जिन्होंने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और मोक्ष का मार्ग उनके सामने प्रकट करके हमारे लिए रखा। अत्रि के अवधूत एक पुत्र हुए हैं। इसी प्रकार बालखिल्य के जो है कृतु के हुए हैं, ययाति राजा के यदु महाराज हुए हैं, दशरथ जी के जैसे रामचंद्र जी हुए हैं कौशल नरेश, ऐसे जो अपने अपने पूर्वजों का, गुरुजनों का, माता पिता का, वंश का जो विस्तार करने वाले, उनकी महिमा का प्रसार करने वाले जैसे ये महापुरुष हुए हैं, उसी प्रकार हरिजन के रामदास जो हरि रामदास महाराज जो सत्पुरुष हुए हैं, उनके परम शिष्य जो उनके तत्व को जीवन में उतारने वाले, जो हमारे कर्म की पासी को मिटा देने वाले हैं, ऐसे जो श्री रामदास महाराज हुए हैं, मैं उन्हीं के चरणों में बैठ करके मैं अपने सारे मन के भ्रम का निवारण करता हूँ और उन्हीं के चरणों का सहारा लेकर के मैं अपने जीवन में शांति का अनुभव करता हूँ, ये दयाल जी महाराज फरमाते हैं। जैसे उनके वेद, मतलब जिन किन्हीं महापुरुषों, जो कोई महापुरुष संसार में प्राणियों को शांति प्रदान करते हैं तो वो अपने पास में से नहीं अपितु पूर्वजों से ली गई ज्ञान के माध्यम से शांति प्रदान करते हैं। मनमुखी जो खुद के द्वारा किया हुआ ही कुछ सिद्धांत बता करके थोप करके ये कोई प्रचार करना चाहते हैं तो ये मनमुखी बात होती है, इसमें कभी शांति नहीं। लेकिन उसमें शांति है जो कि गुरुमुखी है, परंपरा से चली हुई आगे की बात लेकर के चलते हैं। तो उन महापुरुषों के चरणारविंद में बैठ करके ब्रह्म के जो श्रृंग है शिखर में तोड़ रहा हूँ, भ्रम के पर्वत बांग रहा हूँ, जैसा कि बताया भ्रम कोई सतगुरु बांझे रे साचो नाम सुनाए, वो कोई गुरु महाराज ही भ्रम का निवारण कर सकते हैं, हरेक नहीं, सब कोई गुरु जिनको हमने गुरु नाम दे दिया या कोई गुरु बनकर के हमारा गुरु बनकर के बैठ गया और हमें शिष्य बना लिया, क्या वो सभी ऐसा काम कर सकते हैं? ये संभव नहीं। पहले जो स्वयं निर्मुक्त होगा, मुक्त होगा, बंधन से रहित होगा, वो ही दूसरों को बंधन से मुक्त कर सकेगा। यदि कोई जेल में बैठा हुआ आदमी, कैद में पड़ा हुआ आदमी किसी सजा को भोगने के लिए कैद में चला गया और वो कह रहा है कि आओ आओ तुम लोग आओ, मैं तुम्हारा न्याय कर देता हूँ, फैसला कर देता हूँ, आओ तुम मेरी बात सुनो, अगर कोई उसकी बात सुनेंगे तो क्या वो न्याय फैसला कर सकेगा? अरे फैसला करने वाला होता तो खुद जेल में क्यों जाता? रामदास सानो पड़ा कोई पागल आदमी के आओ आओ मैं आपको जोधपुर का पट्टा लिख देता हूँ, पक्का पट्टा स्टाम्प कर देता हूँ, आओ मुझसे पट्टा ले जाइए। अब कौन पागल आदमी होगा जो उस पागल आदमी की बात मान करके और उस पट्टे को लेकर के और प्रसन्न होगा का ठीक है बहुत बढ़िया मैंने जोधपुर का पट्टा प्राप्त कर लिया, जोधपुर का मालिक बन गया, ये कभी हो सकता है? अरे जो मुक्त होगा वही तो दूसरों को मुक्त कर सकेगा। और मुक्त होने के लिए पहले हमारे अंदर जितने भी आने वाले अवगुण है उन अवगुणों से मुक्त होना पड़ेगा, अवगुणों से निवृत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम दूसरों के दुर्गुणों को मिटा सकेंगे, अन्यथा वो हमारे अंदर जो भी अवगुण है वो दूसरों में जाकर के और ज्यादा अवगुणों के रूप में फैलाव करने चलेंगे। हरिजन के रामदास, ऐसे हरि रामदास शिवराज के जो श्री रामदास शिवराज बने हैं, उन्होंने मैंने उनका आश्रय लिया तो उन्होंने मेरे कर्म और भ्रम का सफाया कर दिया। कहा कहूं दीन हो ये भय है कप भय है सपूतनाथ मच्छंद्र के गोरखनाथ, ज्ञानी राम भयो है गोरख के भरत जैसे ऐसे महावीर राग, जलंध्र के कनीन पाव मत सूर रहो है जैसे नंद सका प्रभाव चक्कवे कबीर चाव, निराकार निज नामी एक सिद्ध कयो है तुम तो दयाल नाथ कैसे कर भगवाद शरण की लाज शाम संग मेरे संग तेरो लयो है। अपने भ्रम का निवारण करने के लिए शिष्य को पूर्ण अधीनता स्वीकार करके ही उनके शरण में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसके भ्रम का निवारण होता है, अन्यथा भ्रम नहीं मिटता। वो कैसी अधीनता, कहते हैं कि जैसे मैं परम अधीन होकर के आप सत्पुरुषों का मैंने आश्रय पाया है। मच्छंदर जी गोरखनाथ जी का जैसे आश्रय पाया, ज्ञान पाया, और गोरख जी से जैसे भरत जी ने जल जी पाया, जलेन्द्र नाथ से कनिन पाव ने ज्ञान पाया, उसी प्रकार महाराज मैंने आपका आश्रय पाया है, आप कृपा करके हमारा कल्याण करने वाले हैं, ज्ञान दीजिए। आगे केवल अब नया ही कोई कानून बनाना है, केवल हमारा कल्याण करना या नया ही कानून बनता है, ऐसी बात नहीं महाराज। पहले आगे ये परंपरा से ये बात होती है, ये कितने जीवों का आपने कल्याण किया है, पहले से करते आए हैं, जब पहले करते आए हैं तभी हमें याद आती है, तो हम आपको वही निवेदन करते हैं। आगे तो अनेक बार काज किए बहु प्रकार ताही के प्रभाव कर संग तेरे आयो है, गज को छुड़ायो बंद द्रौपदी की टेक संद, चीर कुम बधार साम महासुख पायो है, भीष्म की लाज काज वायक की टेक राख, पांडव प्रभाव साम सबे ईश्वर आयो है, भगत के काज साम जन सारे सबे काम, ताई के प्रभाव दिन आप रूप थायो है। हे भगवान, आगे आपने जो अनेक प्रकार के काम किए हैं, उन्हीं के बातों को सुन सुन करके मैंने भी आपका आश्रय लिया है। हे प्रभु, आपने जैसे गज का बंद छुड़ाया, डूबते हुए हाथी के बंधन काटे और उसे मुक्त किया, 84 के चक्कर से छुड़ा करके अपने चरणों में उन्हें स्थान प्रदान किया, ऐसे आप कृपालु हैं। आपने द्रौपदी की टेक रखी और उसका जो कपड़ा बढ़ा करके उसकी लज्जा बचाई सभा के बीच में, जब दुशासन उसकी जो साड़ी खींचने लगा तो आपने कृपा करके उसकी लज्जा रखी है, रक्षा की है। ऐसे आवश्यकता पड़ने पर आप कितने जल्दी प्राणियों के सहायक बन जाते हैं, कितने दयालु है प्रभु। जिस समय दुशासन साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी भगवान को पुकार करने आगत द्वारिका वासिन, ये द्वारकानाथ भगवान आइए, रक्षा कीजिए। अब भगवान वहां पर खड़े तो पास में ही थे, लेकिन द्रौपदी ने कहा द्वारकावासी आइए, तो अभी तो मैं द्वारकावासी हूं नहीं, क्यों, अभी तो मैं हस्तिनापुरवासी हूं, और ये बुला रही द्वारकावासी को, तो भगवान को वहां से द्वारका जाना पड़ा, द्वारका जाकर के वापस आना पड़ा। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी दौड़ते हैं ना, इधर दौड़ के वहां पहुंचे, वहां का वहां पहुंचे, इस प्रकार अपने ठिकाने पर पहुंचते थे, तो द्वारकावासी बनकर के आना पड़ा। इतने में पैर का अंगूठा खुला हो गया द्रौपदी का, तो द्रौपदी ने बाद में भगवान से उलाहना दिया कि महाराज जी, अंगूठा मेरा खुला क्यों होने दिया आपने, बाद में बात हुई तब भगवान ने कहा मेरी गलती नहीं, गलती सब तेरी है, मैं तो तत्काल आने के लिए खड़ा ही था, केवल 1 2 3 3 कहने की जरूरत, मैं तो इतने में तैयार था, पर तैने कहा द्वारकावासी, अब मैं तेरी बात को झूठी कैसे करूं, तो मुझे द्वारका जाकर के वापस आना पड़ा, इसलिए इतनी देरी में देरी हो गई, जो अंगूठा जो तेरा पैरों का खुल गया, नहीं तो ये क्या मजाल है, जो पैर का अंगूठा भी खुल जाए, कोई देख सके तुम्हारे पैर को भी। सज्जनों, उस समय सभा के बीच में जो साड़ियों का ढेर लगा, बड़ा विचित्र अंबार लगा, ये जो कपड़ों का जो समर्पण हुआ है, ये भी भगवान के यहाँ पर कायदा है, दिया बिन देवे नहीं दीना ना दयाल, दिया जाने देवसी गज घोड़ा सुख पास, दिए बिन भगवान कभी कोई देते नहीं है, यदि हम देना सीखेंगे तो भगवान भी देंगे हमारे को, और यदि हम किसी को देंगे नहीं तो भगवान भी खाद खींचे रखेंगे, वो भी नहीं देंगे, देने बिना देते नहीं है, देंगे तो फिर देने वालों के लिए भगवान ढूल जाते हैं, चाहे जितना ले लो फिर उनसे, अब देना एक दफे सीखो तो सही है। तो द्रौपदी ने भी पहले कपड़े का दान दिया था, वो दान ही इसके लिए फलीभूत होकर के आया। एक बार द्रौपदी जब अपने पीहर में थी बचपन में, वहां गंगा तट पर वो सर्दी के मौसम में पानी लेने के लिए गई, घड़ा लेकर के पानी पणगट लेके आते थे लोग बाग, ये टंकियां टूटियां तब बनी है, जो आलसू टट्टू बढ़ा दिया, घर के काम के लायक ही नहीं रखा, तो पहले काम करते तो घर का काम भी कर देते, बाहर का काम भी कर देते, सब आराम से कर सकते थे, लेकिन अब कहीं का काम नहीं कर सकते, इतना हो ले भाई टूटी तो परिंडा माते और वह तो ही ठीक है, इतने आठ मिनट लोटो भर के सिरकाड़ो नहीं पड़े, और अब तो सीधी सीधी टूटी मुंडे में लाग जाए तो और ही बढ़िया है, जो आपने टूटी खोलनी नहीं पड़े। आपने पानी लेने के लिए गई सर्दी के मौसम में, एक महात्मा जी गंगा जी में खड़े स्नान कर रहे थे। उस समय महात्मा जी स्नान करते थे तो संयोग से क्या हुआ कि वो पानी में खड़े हैं, उनके हाथ से कोपिन धो रहे थे तो कोपिन छूट गई और पानी में बह गई, पानी में चली गई बह करके। अब वृद्ध बाबा जी सर्दी का मौसम बाहर आवे तो कैसे कि औरतें आ रही है पानी लेने के लिए, एक के बाद एक पनगट चल रहा है। बाबा जी ने विचार किया कि बाहर कैसे निकलूं, अब ठंडा ठंडक भी लग रही है, सर्दी का मौसम है। अब खड़े खड़े बाबा जी की जबाड़े बोल रहे हैं, दांत बोले किट 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 हो रही है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है। खड़े रहे वहां के वहां, निकले नहीं। द्रौपदी अपना पानी भर करके चली गई, वापस दोबारा पानी लेने के लिए आ गई, तब तक वहीं पर खड़े बाबा जी। आखिर में दयावश द्रौपदी ने पूछा, भगवान आप यहां पानी में कोई जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कि कारण क्या है? स्नान तो करने में इतनी टाइम लगती नहीं, डुबकी लगाई है और जल ठंडे पानी में जल चटपट निकल जाते हैं, आप यहां किस लिए खड़े? द्रौपदी ने लाने गया तो दयावश उसने पूछ लिया, तो पूछते ही द्रौपदी को जवाब दिया, बाबा जी ने बेटा करूं क्या, मेरी कोपिन पानी में चली गई, कपड़ा नहीं है इसलिए मैं नंग धड़ंग होकर के औरतों के सामने कैसे आऊं, इसलिए यहां पर खड़ा हूं, जब रात को औरत नहीं आएगी तब मैं बाहर चला जाऊंगा। द्रौपदी को दया कि रात कब पड़ेगी, कब बाबा जी बाहर निकलेंगे, इतनी देर में तो चमड़ी सूख करके बेचारी बेकार हो जाएगी, सिमट जाएगी, शायद ज्यादा पानी ठंड पड़े तो बाबा जी भी बचे कि नहीं बचे, हरिओम तत्सत हो जाए, क्या करें। उसने उसी समय अपनी कीमती साड़ी थी उस साड़ी को फाड़ करके बाबा जी को कोपिन का कपड़ा दे दिया, महाराज कोपिन ले लीजिए और बाहर अपने आसन पर पधारिए महाराज। अब कपड़ा अपने साड़ी का फाड़ करके द्रौपदी ने दिया तो उस समय भगवान ने उस साड़ी के फाड़े में कपड़े के तंतु गिने 99,999 धागे टुकड़े, एक एक तंतु गिने भगवान ने, कितने धागे इसमें। आज इसने ये साड़ी का टुकड़ा दिया है तो मुझे भी किसी दिन इसको साड़ियों के ढेर देने पड़ेंगे, इसलिए पहले हिसाब तो लगा लो, लेकिन इसने दिया है तो दिए वाले को जवाब जरूर देना पड़ेगा, तो इसलिए 99,999 धागे टुकड़े एक एक छोटे छोटे गिन लिए भगवान ने, और उसी दिन उस द्रौपदी को समर्पण करने के लिए इतने पूरे पूरे थान, हजार हजार मीटर के थान रिजर्व करके रख दिए, जिस टाइम जरूरत पड़ेगी उस समय ये थान द्रौपदी के यहां पर पहुंचा देंगे। एक एक से बढ़ करके विलक्षण कपड़ों के थान भगवान ने उसी समय तत्काल रिजर्व रख दिए। एंटे में मिले कि नहीं मिले तो कहीं करा बताओ, हाथों हाथ दिया बिंद ने तो देने के लिए, जब उन्हें छोटा सा कपड़ा दिया तो इसलिए बताया है कि आरतवंत ही अधिक फल खोजी सत करमान, छल बल खेती नीपजे वेला पुल को दान। जो जरूरतमंद प्राणी होता है उसको थोड़ी भी चीज दी जाती है तो वो ज्यादा फल देने वाली होती है, थोड़ी चीज थोड़ी परंतु फल उसका ज्यादा, क्योंकि उसको जरूरत है, थोड़ी सी चीज जरूरत मुताबिक चीज उसे मिल जाती है तो वो एकदम उसे खुशी हो जाती है, वाह कितनी प्रसन्नता होती है हृदय में, उसकी प्रसन्नता वो ही जाने। इसलिए वहां उन्होंने उस समय भी ये बात बताई, भगवान ने उसके लिए कपड़े रखे और जो ही उसने द्रौपदी ने पुकारा सभा के बीच में तो भगवान ने वे कपड़े ढेर के ढेर द्रौपदी के लिए वसन रूप भय श्याम, भगवान वसन कपड़े के रूप बना करके वहां पर प्रकट हो गए। तो सारी बीच नारी है कि नारी, बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, वहां वो दशा बन जाती है। कपड़े के बीच में औरत है या औरत के बीच में कपड़ा है, तो कपड़े में औरत है कि औरत में कपड़ा है, क्या कपड़े की औरत बनी है कि औरत का ही कपड़ा बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। 10,000 गज बड़ घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, बालन बांको कर सके जो सहाय यदुवीर। जो भगवान जिनके सहायक होते हैं एक बाण भी कोई उसका बांका नहीं कर सकता। तो द्रौपदी ने तो वहां पर इस प्रकार जब पुकार की तो पुकार सुनते ही भगवान ने अनंत वस्त्रों का ढेर करके उसकी लज्जा बचाई और उसको किसी प्रकार संकट में नहीं रहने दिया, उसके आत्मे बढ़ करके उसका कल्याण किया। समय समय पर सदा उसके सहयोगी बने रहे, जहां कहीं जरूरत पड़ी उनके साथ रहे, उनके हाजिर हुए, जहां जरूरत पड़ती उसी समय उनके साथ। अब जिस समय दुर्वासा जी को भेजा था भोजन करने के लिए दुर्योधन ने, दुर्योधन के यहां पर चौमासा किया दुर्वासा जी ने, दुर्योधन ने उनका बहुत खातिरदारी करके स्वागत किया। चौमासा पूरा हो जाने के बाद में दुर्वासा जी बोले, भैया क्या चाहते हो बोलो। महाराज जैसे आप मेरे मेहमान बने हैं, मेरे बड़े भाई साहब जो युधिष्ठिर जी जो वन में गए हैं उनके यहां भी एक दिन आप कृपा करके मेहमान बन के पधार जाओ। लेकिन जब वो भोजन कर ले उसके बाद में जाना, भोजन कर ले उसके बाद में आप वहां जाना, पहले नहीं। दुर्वासा जी ने कहा, भाई तुम कहते तो ठीक है, मैं जाने की कोशिश करूंगा तो सही, लेकिन जिस